धार्मिक लोग बोलते तुम जीव हो, और अलग अलग धार्मिक वाले बोलते तुम जीव हो, ईसा को पुकारो तुम जीव हो, कृष्ण को पुकारो तुम जीव हो, और सिंधी हो झूलेलाल को पुकारो, ऐसा बोलते उलझ गए अपन बिना वेद के ज्ञान के, उलझ नहीं है। फिर बौद्धिक आदमी को बुद्धि तो है लेकिन सत्य वस्तु को पाने की जिज्ञासा नहीं। कईयों को जिज्ञासा है तो बौद्धिक विकास नहीं है। किसी के पास जिज्ञासा भी है बौद्धिक विकास भी है तो उनको ऐसा द्वार मिलता नहीं कि इन वाड़ों से, इन मान्यताओं से, इन परिच्छिन्नताओं से, इन पकड़ों से, अकड़ों से छूटा हुआ महापुरुष नहीं मिलता। जो कहलाने वाले धार्मिक लोग हैं तो उनके धार्मिक गुरु भी बोलते कि आपड़ो धर्म आछे, रोज सवारे टिल्लो करो, ठाकुर झिंडी वो करो, इसमें उलझ जाते। ठीक है कि नहीं? इसीलिए वो परमात्मा प्राप्ति कठिन होती है। एक होती है अनित्य वस्तु, दूसरी होती है नित्य वस्तु, और तीसरी होता है सत्य। जैसे ये पेड़ पौधे हैं ये अनित्य है, ये वस्तु अनित्य है, इसका कारण नित्य है। जैसे पेड़ पौधे हैं मिट्टी में से हुए, तो पेड़ पौधे अनित्य है लेकिन पृथ्वी नित्य है। पेड़ पौधों में जो रस है वो अनित्य है लेकिन जल तत्व नित्य है। पेड़ पौधे जिसमें उभर रहे हैं वो आकाश का आधार ले रहे हैं लेकिन अनित्य है, लेकिन आकाश नित्य है इनकी अपेक्षा। तो पांच भूत नित्य हुए लेकिन भौतिक वस्तु अनित्य हुई। तो एक हुआ अनित्य और दूसरा हुआ नित्य, लेकिन अनित्य और नित्य जिससे प्रकाशित होता है, पृथ्वी को पता नहीं मैं पृथ्वी हूं, जल को पता नहीं मैं जल हूं, वायु को पता नहीं मैं वायु हूं, लेकिन जिसको इनका पता चलता है और इनकी नित्य और अनित्यता का जिसको ज्ञान है वो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वो सत है और ज्ञान स्वरूप है, अनंत है, उसका अंत नहीं। प्रलय काल में इन नित्य और अनित्य दोनों का अंत हो जाता है। थोड़े काल में अनित्य वस्तुओं का अंत होता है, प्रलय काल में नित्य वस्तुओं का भी अंत हो जाता है, लेकिन प्रलय भी जिसको नहीं छू सके वो है सत्व। उस सत का बोध पाना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य होना चाहिए, और जब तक सत का साक्षात्कार नहीं किया तब तक मान्यता में उलझ जाएंगे। बुद्धि में कुछ संस्कार पड़ गए कि मैं वकील हो गया, अब मैं कौन हूं ये पता ही नहीं लाला तुमको। बुद्धि में कायदे कानून के पोथे थोथे घुसेड़ दिए, मैं वकील हूं। बुद्धि में अनित्य वस्तुओं का थोड़ा विश्लेषण घुस गया, मैं डॉक्टर हूं। बुद्धि में यह कुछ घुस गया कोई किसी की मानसिक स्थिति के, मैं मानसिक डॉक्टर हूं, लेकिन मैं क्या हूं इसका भी पता ही नहीं तुमको। हैं? मैं व्यापारी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं खेडूत हूं, मैं स्वामी जी हूं, मैं गुरु जी हूं, ये भी भ्रमणा है। मैं बाप जी हूं, ये भी भ्रमणा है। मेरा बड़ा आश्रम है, मैं बड़ा गुरु हूं, मेरे 3.5 लाख शिष्य हैं, ये भी भ्रमणा है। बड़े ऊंच कक्षा के वकीलों के पास बुद्धि होती है, डॉक्टर तो बुद्धि होती है तभी तो डॉक्टर बनेंगे, लेकिन फिर भी अनित्य वस्तु के विश्लेषण में बुद्धि लग जाती है। कभी कभी नित्य वस्तु के महिमा में बुद्धि प्रभावित हो जाती है, लेकिन सत्य वस्तु में जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होती तब तक जन्म मरण चालू रहता है। कितना भी बुद्धि में भर दिया ज्ञान, लेकिन एक तगड़ा बुखार आता है, विस्मृति हो जाती है। कितना भी बुद्धि में डिग्रियां भर लिया लेकिन मृत्यु का झटका लग गया, फिर दूसरा जन्म मिला तो 1 2 3 सीखना पड़ेगा, ABCD फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा कई बार, हजारों लाखों बार ये जीव बेचारा धोखा खाता आया है। तो धार्मिक आदमी बोलेंगे तुम जीव हो, सांप्रदायिक बोलेंगे तुम हिंदू मुसलमान हो, कुटुंबी बोलेंगे तुम हमारे पिता हो, बहन हो, भाई हो, ये हो वो हो, हमारा तुम्हारे में अधिकार है। लेकिन तुम नित्य शुद्ध बुद्ध अमर आत्मा हो, ऐसा ज्ञान तो सद्गुरु लोग देंगे, जिन्होंने सत्य का जिन्होंने बोध प्राप्त कर लिया है, वो श्रुति का ज्ञान जिनको सद्गुरु की कृपा से प्रकट हुआ है, ऐसा ज्ञान तो सद्गुरुओं से मिलेगा। सद्गुरुओं से तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन कई लोग अनित्य वस्तु में उलझे हैं, भोगी भोग में उलझे हैं, उनकी इतनी बुद्धि नहीं है कि भोग से उपराम होकर बुद्धि को सत्य में लगाए। अथवा कई लोग भोग से उपराम हुए, त्यागी तो है लेकिन इतना श्रद्धा और इतना बुद्धि इतना जिज्ञासा नहीं। कई लोग घर बार छोड़ देते, टीला टपका कर देते, पड़े रहते, मांग के खा लिया, पड़े रहे, लेकिन वो जिज्ञासा सत्य वस्तु की नहीं होती, ठीक है ना। कई लोग संसार व्यवहार करते हैं, नीति से करते हैं, वो करते हैं धर्मात्म, अनीति वाले व्यक्तियों के आगे वो नीतिवान दिखते हैं, लेकिन तुम कौन हो, नीतिवान कौन बना है उसको तो जरा देखो, वहां रुक जाते हैं नीतिवान। अधार्मिक के आगे वो धार्मिक दिखेंगे, तो ये सापेक्ष है। निर्धन के आगे धनवान का वट दिखेगा, लेकिन बड़ा धनवान आया तो सुकड़ जाएगा। मरने वाले के आगे लगेगा कि मैं अपन जिंदा है, लेकिन आखिर अपन भी तो मौत के तरफ जा रहे हैं। जिसको अपन मानते तो, जिसको मैं मान रहे वो तो मौत के तरफ जा रहा है, और मौत तुम्हें वांछनीय नहीं है। दूसरों को मरता देखकर मौत की भीति तो बना ली है, लेकिन मौत तुम मानते नहीं। मौत आ जाए तो तुम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि तुम ऐसा अमर वस्तु हो कि जिसको मौत छू नहीं सकती। लेकिन वो अमर वस्तु मर शरीर के साथ, अमर वस्तु मर मान्यताओं के साथ, अमर वस्तु मर कल्पनाओं के साथ ऐसी जुड़ गई है कि कदम कदम पर उसको भय, कदम कदम पर उसको धोखा, कदम कदम पर चिंता, और कदम कदम पर कभी कभी भय नहीं होता तो अहंकार का सुख मिल जाता है। मकान तो जमीन पर होता है, लेकिन मेरे दो मकान हैं। बेटे तो होते सुख के, लेकिन मेरे बेटे हैं, ये मान्यता का सुख। मारा छोकरा छे, छोकरा मारा छे, मान्यता का सुख है, और क्या है। पसार हुआ अन्न जल से, पानी के दो बूंद, और वो तुम्हारे ही बेटे हैं तो बाथरूम में कितने ही फॉलो हो गए, वो बेटे तो कितने ही पसार हो गए, ठीक है ना। हर रोज कईयों के कई बेटे भाई पसार हो जाते, तो पसार हुए शरीर से, पसार हुए मेरे बेटे नहीं, मान्यता रिपीट हो गई मेरे बेटे, ऐसे ही मान्यता रिपीट हो गई कि ये मैं। हकीकत में ये तुम होते तो ऐसे तो हजारों शरीर मिले, हजारों नाश हो गए, तुम ये नहीं। तो तुम क्या हो इसका पता नहीं, जैसा सुनते हैं धार्मिक लोगों से सुना तो अपने को जीव मान लिया, संप्रदाय लोगों से सुना तो अपने को पटेल मान लिया, अपने को ब्राह्मण मान लिया, अपने को ईसाई मान लिया, अपने को मुसलमान मान लिया, कुटुंबियों से सुना तो अपने को किसी का पति मान लिया, किसी का बेटा मान लिया। लेकिन तुम पति नहीं हो, तुम बेटा नहीं हो, तुम पटेल नहीं हो, तुम मुसलमान या हिंदू नहीं हो। हकीकत में तुम ऐसी चीज हो कि जिसका बयान करना हमारे बस की बात नहीं। तुम इतने महान हो, तुम इतने महान हो, इतने अमर हो, इतने शुद्ध हो, इतने पवित्र हो कि अनित्य वस्तु और नित्य वस्तु ये दोनों तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित होती है। अनित्य वस्तु भी तुम देखते हो और नित्य वस्तुओं का भी ज्ञान तुम रखते हो, तो तुम्हें इन सब का ज्ञान है, तो तुम इनसे भी ऊंचे हो। जैसे आकाश में निहारो तो सूरज दिखेगा नन्ना सा, लेकिन सूर्य तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, बोलते लाखों गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है, तो दिखता तो छोटा है, दिखता छोटा है दूरी के कारण। प्लेन में आप बैठ जाएं और तुम्हारे जैसे 200-300 पैसेंजर बैठ जाएं हवाई जहाज, इतना बड़ा होता है। जब आकाश में होता है कुछ दूरी होती है तो नन्ना सा लगता है, जितना ऊंचा होता है उतना नन्ना सा लगता है, नन्ना सा हो जाता नहीं है, लगता है। तो प्रत्यक्ष में जो ज्ञान दिखता है उसको जब तक बुद्धिपूर्वक नहीं विचारते तो वो ज्ञान प्रत्यक्ष तो है, लेकिन उस प्रत्यक्ष ज्ञान में भी अज्ञान का ही प्रभाव ज्यादा है। जैसे सूरज लाखों गुना बड़ा है और जरा सा दिखता है, और कई ऐसे तारे हैं कि ओ महाराज सूरज से भी बहुत दूर है, उनकी किरण चली जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई, किरण चली अभी तक पहुंची नहीं, इतनी दूरी और हजारों माइल की स्पीड से किरण चलती, तो दखते हैं बहुत जरे से तारा, ये क्या हो। तो ये सब प्रत्यक्ष जो ज्ञान होता है इंद्रियों को, उसमें बुद्धि की जितनी जितनी योग्यता होती है उतना उतना उसका विश्लेषण कर पाता है। लेकिन ऐसी बुद्धि करोड़ों करोड़ों बुद्धियों को जहां से सत्ता मिल रही है, करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बुद्धियों को, खरबों खरबों, बोले खरब तो नहीं है, अरे मनुष्य खरब नहीं है, चलो अरब है। लेकिन क्या कीड़ी को बुद्धि नहीं है, मक्खियों में बुद्धि नहीं है क्या, उनमें बुद्धि नहीं होती तो ये खाने योग्य है ये न खाने योग्य है। अरे मच्छर में भी बुद्धि है, वो दाढ़ी पे नहीं बैठता, जहां उसको खुराक मिलता वहीं बैठता है, खाने पीने की बच्चा पैदा करने की तो बुद्धि उनमें भी है। लेकिन ये सारी बुद्धियां जिससे प्रकाशित होती है और जिसमें तिलमिलाती है, उछलती कूदती है और जिसमें लीन हो जाती है, उस वस्तु का ज्ञान नहीं है, वो सत वस्तु है। तो एक अनित्य, दूसरा नित्य और तीसरा सत। तो सत है वो परब्रह्म परमात्मा, अपना आत्मा, और वो अपन है हकीकत में। और जब तक उसका ज्ञान नहीं हुआ तब तक दुनिया के सब ज्ञान एक आदमी के खोपड़ी में भर दो, फिर भी मृत्यु का झटका आएगा तो वो बेचारा अनाथ रह जाएगा। तुमने बाप होकर बेटों से कर्तव्य निभाया, डॉक्टर होकर पेशेंट से कर्तव्य निभाया, पेशेंट होकर डॉक्टर से कर्तव्य निभाया, धार्मिक होकर धार्मिक लोगों से कर्तव्य निभाया, सांप्रदायिक होकर जातनात से कर्तव्य निभाया, लेकिन तुम क्या हो इसका ज्ञान नहीं हुआ तो मृत्यु का झटका लगते ही तुम तो अकेले अनाथ हो जाओगे। इसलिए अपना वैदिक ज्ञान जो अनित्य और नित्य से बिल्कुल निर्लेप है, जिसमें नित्य और अनित्य खत बदा के लीन हो जाता है, वो आत्मा ब्रह्म रूप है, ऐसा ज्ञान जब तक नहीं मिला तब तक 84 के चक्कर में आदमी भटकता रहता है। मान्यता के अनुसार कभी ऊंचे लोकों में जाता है, कभी नीचे लोकों में जाता है। ऊर्ध्वस्थ गच्छन्ति सत्वा, मध्यस्थ तिष्ठन्ति राजसः, अधो गच्छन्ति तामसः। वृत्ति में सत्व बढ़ा तो ऊपर के लोकों में जाएगा, कर्मों में वृत्ति में सत्व बढ़ा तो ऊपर के लोकों में जाएगा, लेकिन गया तो वहां पुण्य का फल भोग के फिर गिरना है, और गिरना है तो फिर यहां मजूरी करना है, फिर नीची योनि में जाएगा पशु आदियों में, या तो मनुष्य में आएगा या तो देवदेही में आएगा, लेकिन चक्कर चालू रहेगा अपने मैं का ज्ञान नहीं जब तक। तो एक होता है माना हुआ सत्य और दूसरा होता है वास्तविक सत्य। माना हुआ सत्य मान्यताओं के अधीन होता है, मान्यता चुप हो गई, मान्यता बदल गई तो तुम्हारे लिए सत्य बदल गया, ठीक है ना। अब मान्यता होती है अंतःकरण की वृत्ति से, और वृत्तियां जरूर बदलती रहती है। इसीलिए बौद्ध धर्म ने कहा क्षणिक विज्ञानवाद, ये बुद्धियां बदलती रहती, इसलिए बुद्धि भी कुछ नहीं, फिर आगे क्या है कि बस कुछ नहीं। यहां तक तो वेदांत के साथ साथ चला बौद्ध धर्म, बुद्धि बदलती रहती यहां तक तो ठीक है, लेकिन बुद्धि की बदलाहट को देखने वाला कौन है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं को देखने वाला तो होगा कि शून्यम 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 को पता नहीं मैं शून्य हूं। तो उपासक लोग उपासना इष्ट के लिए श्रद्धा बढ़ा देंगे, अच्छा है, क्रिया के सुख से भावना का सुख अच्छा है, लेकिन है वो भी तो भावना, भोगी क्रिया के सुख में थक जाता है, इसलिए भक्त जरा भावना का सुख ले लेता है, भावना भी क्रिया की अपेक्षा भावना में परिश्रम कम है सुख ज्यादा है, लेकिन वो भावना भी एक जैसी नहीं रहेगी। क्रिया का सुख से भावना का सुख ऊंचा है, अब भावना के सुख से सविकल्प समाधि का सुख ऊंचा है, क्योंकि भावना की अपेक्षा सविकल्प समाधि लंबा समय रहती है। सविकल्प समाधि की अपेक्षा निर्विकल्प समाधि ऊंची है, लेकिन निर्विकल्प समाधि भी बनाई गई है ना, किया गया है ना, जो किया हुआ है वो शाश्वत नहीं है, जो शाश्वत है उसका बोध हो जाना शाश्वत है। तो शाश्वत है आत्मा, अब ये सुना है वो आत्मा कैसा है उसको ठीक से नहीं जाना, उसमें बुद्धि को लगाओ। इसलिए श्रुति कहती है आत्मा वा श्रोतव्यम मंतव्यम नितध्यासितव्यम, आत्मा का श्रवण करो। बोले श्रवण तो किया अपने आत्मा का, अपने असली मैं का, लेकिन कुछ परम लाभ का अनुभव नहीं हुआ, मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ, नित्यता का अनुभव नहीं हुआ, सारे दुख मिटे नहीं। तो बोले मिटे नहीं तो अभी बुद्धि में इतना प्रकाश नहीं आया, अब मनन करो। मनन किया, मनन ने किया, थोड़ी कसर रह गई ऐसा लगता है। बोले नित्यध्यासन करो, जो मनन किया वो मनन में मनन की प्रगाढ़ता ऐसी बढ़ाओ कि नित्यध्यासन, नित्यध्यासन हो जाएगा तो साक्षात्कार हो जाएगा। जब एक बार साक्षात्कार हो गया, एक बार ज्ञान हो गया, फिर उसका अज्ञान नहीं होता। सत्वस्तु का एक बार ज्ञान हो जाए उसका अज्ञान नहीं होता। जैसे ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट माइक, इसका ज्ञान हो गया, अब इसको हम छुपा दिए तो भी इसका ज्ञान आपसे हम नहीं छीन सकते, इसका अदर्शन होगा, विस्मृति होगी, लेकिन अज्ञान नहीं होगा। तो ये तो परिच्छिन्न वस्तु है, सीमित है, इसको तुम छुपा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो सत्य स्वरूप आत्मा है उसको हम या और कोई गैर छुपा नहीं सकता। ठीक है ना, पत्नी सदा नहीं रहती, पुत्र सदा नहीं रहेंगे, ये हॉस्पिटल या अपना बड़ा बिल्डिंग सदा नहीं रहेगा, यहां तक कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ सदा नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा आत्मदेव कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। उसका ज्ञान हो जाए तो आप परम स्वतंत्र हो जाएंगे, आपके सिर पर कोई नहीं होगा, यहां तक कि देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं चलेगा। वो अगर आपसे मिलेंगे तो आत्मभाव से मिलेंगे, मित्र भाव से मिलेंगे, आप ऐसी चीज है। उसका ज्ञान नहीं है तो फिर रिझाते रहो, ढुकढुकी बजाते रहो। बना दिया, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो श्रुति भगवती कहती है हे भैया तुम चेतन हो, हे चेतन तुम अपने ब्रह्मत्व को जानो। सांप्रदायिक लोग बोलते हैं तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, मुसाई हो, पुंछड़ा हो, ये हो। जातिवादी बोलते हैं तुम पटेल हो, तुम लेवा हो, तुम कड़वा हो, तुम चौधरी हो, तुम गुजराती हो, तुम सिंधी हो, तुम श्रीमाली ब्राह्मण हो, तुम अमुक ब्राह्मण हो, तुम मारवाड़ी हो। धार्मिक लोग बोलते हैं तुम जीव हो, और संसारी लोग बोलते हैं तुम मनुष्य हो, हमारे भाई हो, हमारे पुत्र हो, हमारा तुम्हारे में हक है, हमारे पति हो, तुम्हारी संपत्ति में हमारा हक है, हमारे पिता हो, तुम्हारी संपत्ति में हमारा हक है, हमारे बेटा हो, हमारा तुम में मेरा हक है, सेवा करो, संसारी लोग ये बताएंगे। अब तुम क्या हो बताओ, क्या हो खोजो। तो संसारी की बात मानो, संप्रदाय वालों की बात मानो, धार्मिक लोगों की बात मानो, अथवा तो वेद भगवान की बात मानो कि तुम नित्य मुक्त अमर हो, ऐसे लाखों लाखों शरीर तुमको मिले और छूट गए, फिर भी तुम्हारा जो अमिट तत्व है वो सत्य है, जिसको नित्य और अनित्य का ज्ञान है वो सत्य स्वरूप है, वो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तुम हो। अपने को जानो तो सारे दुख सदा के लिए मिट जाए। जिस पद में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य और वरुण कुबेर और ब्रह्मवेता जगे हैं उस पद में जग लो, बस सारे दुख मिट जाएंगे, सारे जन्म मरण के चक्कर छू हो जाएंगे, सारे खिंचाव तनाव बंधन पूरे हो जाएंगे। नहीं तो सबसे निभाते 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 जीवन निभ जाएगा, मृत्यु का झटका आया तो कर्ता अनाथ रह जाएगा, कर्ता अपने स्वयं को जान ले सनाथ हो जाए। नारायण 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 नारायण। कईयों के पास बुद्धि की कमी होती, कईयों के पास श्रद्धा की कमी होती, देवयोग से श्रद्धा और बुद्धि दोनों कहीं कहीं दिखती, और वहां दिखती तो फिर जिज्ञासा की कमी होती। अपने भगवान ने मानिए छे, रूटीन प्रमाणे करिए छे, बुद्धिशाळी छे, पती गयो अने लोको आपने धार्मिक कहे, आपने प्रवचन आपी दीधु एटले लोको मां ताळियो पड़ी गई, लोको आपने बापजी ए कही दीधा आ मोटा महाराज छे के लाखो माणस एमने सांभळे छे, लाखो शिष्यो छे, पण ए जिज्ञासा छे के नहीं सत्यना बोधनी। नहीं तो कथाओ वार्ताओ पुस्तको वाँची गोखी रटी ने अमे थई गया मंडलेश्वर 1008, तो सत्यनो साक्षात्कार वेगळो रह्यो अने ए अड़चण थई गई, उल्टू उल्टानी ए अड़चण थई गई। आगे प्रसिद्धि थई गई ने हवे तो क्यांय सत्यने शोधवा माटे जवानी जरूर नहीं, बधी अनुकूलता मळे। मूंड मूंड आए तीन गुण, सिरकी मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। मुंडन मुंडन हो गए बाबजी बाबजी, तो जिज्ञासा नहीं रहती। मेरे गुरुदेव के एक मित्र संत थे, गुरुजी के जीवन लीला सुनने के लिए बड़ी जिज्ञासा रहती थी। गुरुजी से पूछने में जरा संकोच भी होता था मर्यादा के कारण। पता चला कि उत्तर काशी में गुरुजी के मित्र संत रहते। हम वहां पहुंच गए, वो बाबा जी का नाम था स्वामी गंगागिर। उस समय वो 98 साल के थे। हमारा उनसे वार्तालाप हुआ तो उन्होंने एक बात और बताई। एक मंडलेश्वर, बड़े प्रसिद्ध मंडलेश्वर, ऋषिकेश में, हरिद्वार में और भारत में कई जगह उनके बड़े बड़े आश्रम। वो एक बार रोते रोते चरणों पे गिर पड़े। पूछा गया कि भाई तुमको क्या चाहिए, क्या कोई धन का आशीर्वाद चाहिए? बोले महाराज धन तो इतना है कि ऋषिकेश से उत्तर काशी तक अगर रुपए बिछाकर उन पर चल के आना चाहूं तो भी आ सकता हूं, इतना धन देने वाले लोग हैं मेरे पास। तो कहीं कोई शास्त्रार्थ में परास्त हो गए? बोले महाराज शास्त्रार्थ में तो इतना शास्त्र ज्ञान है कि दिन को रात साबित कर दूं और रात को दिन साबित कर दूं, किसी भी शास्त्र पर बोलूं अगर तो तर्क की शक्ति इतनी है कि सज्जन को दुर्जन सिद्ध कर दूं, दुर्जन को सज्जन सिद्ध कर दूं, और क्या कमी है? क्यों रोते, क्यों चरणों में गिरे हो, क्या चाहिए? कोई प्रसिद्धि कम हुई, अपकीर्ति हुई? बोले महाराज कीर्ति तो इतनी है, इतने भक्त जान देने को तैयार हैं कि ऋषिकेश से अगर चाहूं तो भक्त सो जाएं और उनके बिछे हुए बालों पर अथवा उनके अंगों पर पैर रखकर यहां पहुंचूं, इतने सारे भक्त हैं। फिर क्या कमी है तुम्हारे में महामंडलेश्वर? महाराज कमी यह है कि आखिर मृत्यु ये सब छीन लेगी, सत्व वस्तु का साक्षात्कार नहीं हुआ, उसकी व्याख्या हम करते लेकिन अनुभव नहीं हुआ। चलो अनुभव नहीं हुआ, इतनी भी समझदारी है, ये भी ईमानदारी है तुम्हारी। जय जय, इतने आश्रम है, इतना बड़े मंडलेश्वर हो, इतने लाखों करोड़ों पति शिष्य भी हैं, इतना तर्क शक्ति है, लेकिन अब इस तर्क को अनुभव का जब तक जामा नहीं मिलेगा तब तक तो लोगों की नजर से बड़े दिखोगे, लेकिन मृत्यु के भय से तो जो मृत्यु के भय से नहीं बचा वो जन्म और मरण के चक्कर से भी नहीं बचा। तो मृत्यु का बहुत बहुत तो मृत्यु की दौड़, मृत्यु का प्रभाव अनित्य वस्तु पर होता है और परलय का प्रभाव नित्य वस्तु पर होता है, लेकिन सत्य पर न मृत्यु का प्रभाव होता है न परलय का प्रभाव होता है। वो सत्य है आत्मा, उस आत्मा का लेआउट तो तुमने सुना है शास्त्र से, आत्मा का परोक्ष ज्ञान तो है लेकिन अपरोक्ष ज्ञान, जैसे मैप में तुमने दिल्ली तो ठीक समझ लिया लेकिन अभी दिल्ली देखा नहीं, दिल्ली तो प्रत्यक्ष होगा लेकिन ये साक्षात्कार प्रत्यक्ष वस्तु नहीं है, वो अपरोक्ष है। प्रत्यक्ष वस्तु बताने में वेद का उद्देश्य नहीं है, प्रत्यक्ष तो देखता है ये गादी है, ये बैग है, ये पंखा है। अब पंखा है इसमें कोई शास्त्र क्यों बोलेगा कि ये पंखा है? इसमें वेद को बोलने की जरूरत नहीं प्रत्यक्ष वस्तु को कि ये घड़ा है, ये पंखा है, नहीं, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, जो मन की कल्पना में नहीं आता, जो ऐहिक बुद्धि से तोला नहीं जा सकता, उसमें शास्त्र प्रमाण होता है, श्रुति प्रमाण है। तो वो श्रुति ने उस परब्रह्म परमात्मा को बताया, नित्य और अनित्य दोनों से पर वस्तु श्रुति ने कहा। ये श्रुति का ज्ञान है, ये हम जो बोल रहे हैं वो भी तो श्रुति भगवती का अमृत है। नित्य वस्तु, अनित्य वस्तु, और उनसे दोन पर सत वस्तु होती, जो नित्य अनित्य की प्रकाशक है। तो सत वस्तु चेतन है, वो सत्यम ज्ञानम, वो सत वस्तु है, ज्ञान स्वरूप भी है, और उसकी कोई सीमा नहीं, अनंत है। देश की, काल की और वस्तु की परिच्छेदता से वो रहित है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो सत्य है। नित्य नित्य नहीं, नित्य नित्य जिससे प्रकाशित होता है वो है सत्य, वो ज्ञान स्वरूप है, उसी से सबका ज्ञान होता है। सब मिलकर उसको नहीं बना सकते, लेकिन उसी से सब बन जाता है। सत्यम ज्ञानम, वो ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। पृथ्वी का भी कहीं छेड़ा अंत मिल जाएगा, आकाश का भी अंत हो जाता है, पांच भूतों का भी अंत हो जाता है परलय में, ब्रह्मलोक का भी अंत हो जाता है, वैकुंठ वैकुंठ स्वर्ग वर्ग का भी अंत हो जाता है। लेकिन जिसका स्वर्ग और नरक के अंत के बाद भी जिसका अंत नहीं होता, वो है अनंत। इसलिए परमात्मा का एक नाम है सच्चिदानंद, सत चित्त और आनंद स्वरूप। जिसका अंत होता है उसका आनंद नहीं टिकता। शरीर का अंत होता है तो शरीर जन्य सुख भी है, उसका आनंद नहीं टिकेगा। दोस्ती का भी अंत होता है तो दोस्ती का सुख भी सतत नहीं टिकता। पति पत्नी का सुख भी सतत नहीं टिकता है। धन और सेठ का मुलाकात भी सतत नहीं टिकता। तो सब संसार अनित्य है, बदल रहा है, लेकिन वो परमात्मा नित्य है। इसलिए आपका नित्य परमात्मा है, इसलिए आप अनित्य संसार में भी नित्य संबंध जोड़ना चाहते हैं, धन का और सेठ का। सेठ को धन मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहेगा, किसी व्यक्ति को यश मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन ये सब छूटती है। ये तो पानी के बुलबुले हैं, इसमें कितना भी मर मिटो, कितना भी नीचो डालो अपने को, फिर भी ये चीजें टिकती नहीं। ये नित्य जो पांच भूत हैं उनसे ये अनित्य वस्तु बनी, तो पांच भूतों की भी शाश्वत नित्यता नहीं है, इसलिए वो सत्य नहीं माने गए। जगत को मिथ्या कहा शास्त्र ने, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और जीव ब्रह्मेव ना परे, ये जो जीव 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 धार्मिक लोगों ने कहा तुम जीव हो, वास्तविक में इसको तुम खोजोगे तो जीव भी तुमने सुना है, सुन के माना। बचपन में भूल डाली जाती है और बड़ा होकर वही भूल दूसरों में डालते रहते हैं। बचपन में अपने में भूल डाली गई और अपन बड़े हुए तो अपने में दूसरे में भूल डालते गए और पता ही नहीं कि भूल है। ये जातीयता, सांप्रदायिकता, अच्छापना, बुरापना, सुखपना, दुखपना, ये सब का सब जो है भूल भुलैया है। कल बताई थी ना बात, वह गई ना, कल बताई थी बात के स्वामी प्रज्ञानंद नाम के व्यक्ति मद्रास गए, तो मद्रास में एक रिकॉर्डिंग में प्रचार हो रहा था घोड़ागाड़ी में, और पेम्पलेट भी बट रहे थे कि अमुक मैदान में भूल भुलैया का नाटक होगा। ओ महाराज बोला कि भूल भुलैया में जो बेवकूफ बनाने का नाटक, तो बेवकूफ बनने को कौन जाएगा, और फिर उसके पैसे भी रखे, ये खामखा मेहनत करता है। फिर देखा कि चलो अब इसी रास्ते पे होगा, जाएंगे शाम को। गया तो देखा कि मैदान में जहां वो भूल भुलैया का खेल दिखाना था, वो जगह जितनी सीटें थी उससे डबल तो पब्लिक थी। किसी को टिकट मिली, किसी को नहीं भी मिली, किसी को दुगनी तिगनी चार्ज में भी टिकट खरीदना पड़ा, और वो भी नहीं मिली तो हल्ला गुल्ला हुआ, शोरगुल हुआ। हमको चाहिए, हम देखना चाहते, ओ हाप हुआ, पुलिस आ गई, लाठी चार्ज हो रहा है। महाराज ने कहा जाओ, पागल बनने के लिए भी लोग पैसा दे रहे हैं, भूल भुलैया देखने के लिए। रात हुई, जब पड़ोस के लोग देख के आए, पूछा कैसा, अरे बोले ऐसा उसने जादू देखा, ऐसा भूल भुलैया देखा, हो बखान करने लगा। जब भूल भुलैया था तो फिर देखने क्यों गए? उस आदमी ने कहा, महाराज जी भूल भुलैया है, बेवकूफ बनाने का खेल था। तो ऐसा समझ के आप भी तो देखने आए कि कैसा देखते हैं। महाराज निरुत्तर हो गए बेचारे। महाराज को भाई जिज्ञासा हुई कि बेवकूफ बनाने की नाटक में बेवकूफ बनाया जाता है, कुछ होता नहीं वास्तविक में, और भूल भुलैया है सब, फिर भी लोग देखने जाते हैं। अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी को बोला कि ऐसा ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, केवल नाटक में भूल भुलैया है क्या? ये सारा संसार ब्रह्मलोक तक का भी तो भूल भुलैया है, स्वर्ग और नरक भी भूल भुलैया है, ये जो संसार तुमको दिखता है वो भी तो भूल भुलैया है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य, और क्या, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं किसी का पति हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी का भाई हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, कितना भूल भुलैया घुस जाता है। मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थी हूँ, मैं नेता हूँ, ये सब भूल भुलैया है। केवल वो मैदान में जो दिखाता है वो तो पेटा भूल भुलैया है, वास्तविक में पूरा संसार भूल भुलैया है। आखी से आखू जगत ज सिनेमा छे, अने जगत में जो सिनेमा छे तो पेटा सिनेमा छे। जेम तमे स्वप्नु जोयु, हवे स्वप्नु जोयु ने तमे गाय दोई रहा छे स्वप्न में, तो गाय तो बाहर छे, दूध तो बाहर छे, पण इच्छा छे तमारा अंदर के दूध पाक बनावीशु। तो स्वप्नानी गाय बाहर, स्वप्नानु दूध बाहर, पण दूध पाक बनावानी इच्छा तमारा अंदर छे, तो स्वप्नमां अंदर बाहर देखाय छे। तो आ जगत एक स्वप्न छे, अने स्वप्न जे छे ए पेटा स्वप्न छे, अने पेटा स्वप्नमां पेटा स्वप्न आवे छे अंदर बाहर। तो एक दो भूल भुलैया नहीं है, स्वर्ग नरक ये सब भूल भुलैया है, उसमें आंटे मार रहे हैं। तुमने जो ज्ञान सुना है उसका मनन नहीं किया, नित्यध्यासन नहीं किया, अनित्य और नित्य से परे सत्य वस्तु का साक्षात्कार नहीं किया, इसीलिए तुम्हारा आकर्षण बना रहा। गुरुजी ठपको आ, तो गुरुजी ने जरा कहा, तब प्रज्ञानंद की प्रज्ञा खुली, गए एकांत में और अनित्य वस्तु का वृत्ति सापेक्ष है, अनित्य वस्तु नित्य वस्तु भी वृत्ति सापेक्ष है, लेकिन वृत्ति जहां से उठती है और हजारों वृत्तियां उठ उठ के जिसमें लीन हो जाती है, वो मैं कौन हूं, उसको खोज के वो अमर पद को प्राप्त हो गया, अपने शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। उसके लिए बुद्धि, बुद्धि है तो भोग में उलझी है, बुद्धि में जिज्ञासा होनी चाहिए सत्य वस्तु को पाने की, नहीं तो कितना भी भोग भोगा, जिस शरीर से मजा लिया उसको तो भैया जला देना है, ये तो बिल्कुल स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप जिस शरीर से आप एयर कंडीशन का मजा लिया, पत्नी का, पत्तू का, उसका उसका मजा मजाक में अपने जीवन को होली कर दिया, उसको तो एक दिन जला देना है। और ऐसे तुमने हजारों बार शरीर, अनित्य शरीर जलाए, तो इस अनित्य शरीर को जीने के लिए, खिलाने के लिए, मजा दिलाने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। अरे थोड़ा सा समय जीवन दाता को पहचानते तो तुम तो अमर हो जाते, लेकिन तुम्हारी मीठी निगाहें पड़ती वो भी अमरता की झलकें ले लेता। तुम ऐसी चीज हो, नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावक, शस्त्र से तुम कट नहीं सकते, अग्नि से तुम जल नहीं सकते, हवा में तुम सूख नहीं सकते, पानी में तुम डूब नहीं सकते, शरीर तो डूबेगा, शरीर पर तो असर होगी। तो वास्तव में तुम शरीर नहीं हो, लेकिन सुन सुन के भूल भुलैया पक्की हो गई, प्रगाढ़ हो गई। नेपोलियन कहता था, 100 बार अगर असत्य दोहराया जाए वो भी सत्य होके भासता है, 100 बार झूठ बात हो वो भी दोहराई जाए तो सच्ची जैसी लगती है, क्योंकि सत्ता तुम्हारे सत्य स्वरूप की मिलती है। नित्य वस्तु अनित्य वस्तुओं को निहारने की सत्ता तो तुम ही दे रहे होगे, तो वास्तव में तुम सत्य वस्तु। उस सत्य स्वरूप का श्रवण करके मनन करो, श्रवण करके ज्ञान हो जाए तो बेड़ा पार है, अगर तीव्र जिज्ञासा है तो श्रवण मात्र से हो जाएगा, नहीं तो फिर मनन करो, मनन से नहीं होता तो निदध्यासन करो, फिर साक्षात्कार हो जाएगा। फिर इंद्र का वैभव भी तुम्हारे को प्रभावित नहीं कर सकेगा, और नरक भी तुम्हारे लिए नरक नहीं बनेगा, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और परलय तुम पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, तुम ऐसी चीज हो, ऐसा तुम्हारा अनुभव हो जाएगा। अभी तो जरा सा इधर उधर का होता है तो प्रभाव पड़ता है, हकीकत में तुम्हारे पर प्रभाव नहीं पड़ता, पड़ता है तो शरीर पर पड़ता है, मन पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है। और ये शरीर मन और बुद्धियां बदलती है, फिर भी तुम ऐसी चीजों की तुम्हारे को एक जरा भी आंच नहीं आती, लेकिन दुर्भाग्य से उसका तुमको पता नहीं है और बदलने वाली चीजों से जुड़ गए। जैसे आप कार में बैठे हैं, तो कार में बैठने के सेठ को ऐसा आदत पड़ गया, कार के साथ तादात में हो जाता है, ड्राइवर जरा ब्रेक लगाता है या स्टीयरिंग बदलता है तो अपने आगे की सीट पे होता तो अपने अपना दिल भी डोलता रहता है, हिलता। कार जब पुल के नीचे से गुजरती है, रेलवे का पुल ऊपर है और कार नीचे से गुजरती है, ऊपर से रेलगाड़ी रवाना होती, तो आप कार में बैठे हुए भी आपका सिर नीचे हो जाता है, आपको उस समय याद भी नहीं रहता कि रेलवे के पटड़ियां हां और मेरे सिर के बीच में कार की छत भी है, सिर नीचे नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन हो जाता है, जुड़ जाते हैं कि ऐसा होता है। अनुभव करके देखो, आप साबरमती आओ मोटेरा आश्रम, ऊपर से वो महसाणा लाइन है दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली, तो नीचे से रोड है ऊपर से पुल, जब उससे गाड़ी गुजरती हो और आप कार में या बस में बैठे हो तो आपका सिर यूं हो जाए। अब सिर ऐसा नीचे नहीं करे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये तादात में हो जाता है, अध्यास हो जाता है। परमात्मा तत्व का अज्ञान है, हम क्या हैं, सत्य स्वरूप हम कैसे हैं, उस वस्तु का अज्ञान है। तो एक होता है अज्ञान, दूसरा होता है अध्यास। अज्ञान एक ही होता है, लेकिन अज्ञान का विस्तार अध्यास होता है। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है तो अंधेरा है, रस्सी का अज्ञान है, फिर अध्यास हुआ कि ये रस्सी, ये तो मरेला सांप होगा, किसी ने कहा ये होगा डांग होगी, किसी ने सोचा ना ना ये तो दरार होगी, किसी ने कहा पानी का चीला है, दूसरे ने कहा नहीं नहीं यार ये तो रस्सी होगी। अच्छा रस्सी है तो जरा जाओ तो पता चले, अब नजीक तो जा रहा है फिर भी अध्यास बना है अज्ञान के कारण, दोनों तरफ भागने की जगह देखता है। तो ऐसे ही अपने आत्मा का अज्ञान है, इसलिए अध्यास हो गया। किसी ने कहा तुम पटेल है वो भी थोप लिया, किसी ने कहा तुम जीव है वो भी थोप लिया। अब बुद्धि में संस्कार पड़े जरा, हाड़ मांस रक्त वात पीत कफ का टेम्परेचर का थोड़ा संस्कार बुद्धि में पड़ गया, किसी ने कहा यू आर डॉक्टर, पक्का हो गया कि मैं डॉक्टर हूं, कायदे कानून के पोथे पढ़े, और किसी ने कहा दिया कि अब तुम वकील हो गए, सनत भी मिल गई, अब हो गए वकील, ये अध्यास पड़ गया। हकीकत में तुम क्या है इसका अज्ञान है, और फिर जैसा जैसा कचरा भरता गया ऐसा ऐसा अध्यास पक्का होता गया, और ये अध्यास अध्यास में जीवन उलझ गया। अगर अभी कोई कह दे कि तुम वकील नहीं हो तो आप नाराज हो जाएंगे, कोई आपको कह दे तुम डॉक्टर वॉक्टर नहीं हो तो, ये तो सत्संगी हो, आप लोग डॉक्टर बैठे हैं सत्संगी हो तो आप तो समझोगे कि किस अर्थ में कह रहे हैं। और दुकान पे कोई पेशेंट आके कह दे तुम डॉक्टर वॉक्टर नहीं हो, कह लिया नहीं क्या आज तारा बाप नु सर्टिफिकेट चेक है, तो तुम किसी के सर्टिफिकेट से प्रमाणित हो रहे हो, कोई नु प्रमाण पत्र से तेजी तुम्हें प्रमाणित हो, कितनी भूल भूलैया है।